सतिपट्ठान के शिविर का छठा दिन पूरा हुआ। भगवान की धर्म वाणी का पारायण करते हुए खूब गंभीरता पूर्वक साधना करनी है। पारायण कोई कर्म कांड नहीं है, वाणी का पारायण धर्म को समझने के लिए है, साधना विधि को समझने के लिए है और अपने भीतर प्रेरणा जगाने के लिए है, मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए है। इसी समझदारी के साथ पारायण का काम हो, पर प्रमुख काम तो पटिपत्ति का ही, पटिवेदन का ही। अब तक के पारायण में हम चार सतिपट्ठानों में से दो सतिपट्ठानों की चर्चा कर ली, माने दो क्षेत्रों में से एक क्षेत्र का वर्णन कर लिया, काया का क्षेत्र। काया और उस पर उत्पन्न होने वाली वेदनाओं का क्षेत्र, ये एक क्षेत्र है जिसे हम अपनापा कहते हैं, मैं कह करके, मेरा कह करके, मेरी आत्मा कह करके, जिसके प्रति आसक्ति पैदा करते हैं, उस आसक्ति को तोड़ने के लिए ही ये साधना है। तो इन दो क्षेत्रों में ही आसक्ति जागती है, शरीर और शरीर पर होने वाली संवेदनाएं, ऐसा ही दूसरा क्षेत्र चित्त और चित्त पर उत्पन्न होने वाले धर्म। तो अब चित्त के बारे में समझें, चित्तानुपश्यना। कथंच पन भिक्खवे भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, किस प्रकार चित्त में चित्त की विपश्यना करता है। एक बात समझ लेनी चाहिए, काये कायानुपस्सी, वेदनासु वेदनानुपस्सी, चित्ते चित्तानुपस्सी, धम्मेषु धम्मानुपस्सी। महापुरुष कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं तो निरर्थक नहीं, बड़ी काम की बात होती है। हम न समझें यह हमारी कमजोरी, हमारी अविद्या। काया में काया का दर्शन करता है, काया में। तो एक अर्थ तो ये कि ये बहुत स्थूल स्थूल काया जो हमें ठोस लगती है, इसी में सूक्ष्म 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 तर काया का अनुभव करता है, काया में ही करता है। ये स्थूल लखने वाली काया ही विभाजन विघटन होते 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 एक सूक्ष्म काया हमारे सामने प्रकट हो जाती है, रूप आकृति से नहीं, अनुभूति के स्तर पर। और एक अर्थ ये कि हमें काया में ही काया की अनुभूति करनी है, किसी कल्पना में न पड़ जाए, किसी पढ़ी पढ़ाई बात को, सुनी सुनाई बात को मान करके, कोई दार्शनिक उलझन की बात को मान करके, और हम केवल उसका चिंतन करने लगे, उसकी कल्पना करने लगे, तो अनुभव गया, अनुभव गया तो विपश्यना नहीं हो रही। अनुभव हो तो अनुभव वहीं का हो जिसकी की विपश्यना हो रही है, काया में काया का ही अनुभव हो तो काये काया अनुपस्सी, वेदना में वेदना का अनुभव हो, वेदना सु वेदना अनुपस्सी, चित्ते चित्ता अनुपस्सी, चित्त में ही चित्त का अनुभव हो, और इसी प्रकार धर्म में ही धर्म का अनुभव हो। कल्पनाएं करने लगेंगे तो उलझ जाएंगे। कभी कभी कोई साधक अपनी परंपराओं की मान्यता के साथ जुड़ा हुआ समय लगता है परंपराओं की मान्यताओं का लेप उतरने में, तो कहता है कई शिविर लेने के बाद भी मुझे यूं लगता है जैसे मैं बाहर खड़ा हूं और बाहर से इस सारे शरीर को देख रहा हूं, बाहर खड़ा हूँ, सारी वेदनाओं को देख रहा हूँ, चित्त को देख रहा हूँ, धर्म को देख रहा हूँ, उलझ गया ना, बाहर कोई नहीं खड़ा, कोई व्यक्ति देख रहा है, बाहर से कोई व्यक्ति हमारे शरीर को देख रहा है, तो बात नहीं समझ में आई, भीतर ही देखा जा रहा है, काया में ही काया देखी जा रही है, वेदना में ही वेदना जानी जा रही है, चित्त में ही चित्त जाना जा रहा है, धर्म में ही धर्म जाना जा रहा है। इस अर्थ में चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति इद भिक्खवे भिक्खु सैरागंग वा चित्तं सैरागंग चित्तंति पजानाति वीतरागंग वा चित्तं वीतरागंग चित्तंति पजानाति सैदोसंग वा चित्तं सैदोसंग चित्तंति पजानाति वीतदोसंग वा चित्तं वीतदोसंग चित्तंति पजानाति सैमोहंग वा चित्तं सैमोहंग चित्तंति पजानाति वीतमोहंग वा चित्तं वीतमोहंग चित्तंति पजानाति। कैसे कोई चित्त को जानेगा, फिर कल्पना करेगा मेरे शरीर में ऐसा कोई चित्त है, इस रंग वाला, इस रूप वाला, इस आकृति वाला, कल्पना करेगा। चित्त को जाने कैसे, ठीक वैसे ही जैसे काया का काम करते हुए कहा, काया को जाने कैसे, काया में कहीं कोई खटपट हुई, कोई घटना घटी और हमें अनुभव हुआ तो उस पर संवेदना जागी तो हमें अनुभव हुआ, सिर पर मन गया तो सिर में कोई संवेदना हुई और हमें अनुभव हुआ तो हम कहते हैं ये सिर है, उसके बिना हमारे लिए सिर का अस्तित्व नहीं, कैसे सिर का अस्तित्व होगा, कल्पनाएं होगी। हम आंख बंद करके हमारा ऐसा सिर है, उसमें हड्डी है, उसमें चमड़ी है, उसमें मांस है, इत्यादि इत्यादि ये करके रह जाएंगे, हमें अनुभव नहीं हुआ, संवेदना होगी तो अनुभव होगा, इसलिए काया के साथ वेदना जुड़ी हुई है। ऐसे ही चित्तानुपस्सना हो नहीं सकती जब तक कि चित्त में कुछ हो नहीं, चित्त में राग जागा है तो हमारे लिए चित्त का अस्तित्व है, अन्यथा नया नया साधक ये कल्पना करने लगे मेरे भीतर एक चित्त है तो कल्पना ही करेगा ना, उसमें कुछ जागा है, कुछ हुआ है, राग जागा है तो जाना देख चित्त है और उसमें राग जागा है, ये राग वाला चित्त है बस, पजानाति केवल जानता है, ये राग वाला चित्त है इसलिए इससे घृणा करूं, इसलिए इसे धकेलूं, इसलिए इसे दूर करूं, फिर गलत रास्ते पड़ गया, फिर भी प्रश्न नहीं हो रही, राग वाला चित्त है बस इतना भर जानना है, बाकी काम अपने आप कुदरत का कानून करता है, विश्व का विधान करता है, ये राग वाला चित्त है। ऐसे साक्षी भाव से जाना कि नया राग पैदा करना बंद कर दिया, नया द्वेष पैदा करना बंद कर दिया, तो अपने आप उसके परतें पर परतें परतें पर परतें उतरती गई उतरती गई उतरती गई, जो राग इस समय जागा था और यूं साफ मालूम हुआ कि ये राग वाला चित्त है, तो जो जागा था उसकी परतें उतरते उतरते गिर हो गई, तो इस समय राग नहीं है, तो वीतरागंग वा चित्तंग वीतरागंग चित्तंग तिपजानाति, तब भी खुशियों से नहीं नाचने लगा, जब राग वाले चित्त को देखा तो उदासी में नहीं डूबने लगा, निराशा में नहीं डूबने लगा, उसके प्रति द्वेष नहीं करने लगा, उससे घृणा नहीं करने लगा, ये सत्य है, इस क्षण का ये सत्य है, राग वाला चित्त है इस समय, राग वाला नहीं है तो इस समय राग वाला नहीं है, जब राग वाला नहीं है तो खुशियों से नहीं नाचने लगा, नहीं तो फिर प्रतिक्रिया कर रहा है, और प्रतिक्रिया कर रहा है तो दोबारा जब राग जागेगा तो उतनी ही ज्यादा उदासी आएगी। सच्चाई यथाभूत, यथाभूत ज्ञान दर्शनं, यथाभूत जैसा हुआ, जैसा हुआ वैसे ही जाना, जैसा हुआ वैसे ही जाना, ज्ञान पूर्वक जाना, और ज्ञान यही है कि ये नित्य नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, ये ध्रुव नहीं है, कहीं इस पर आरोपण नहीं कर दो नित्य शाश्वत ध्रुव का, देख रहा है ना तो साफ मालूम होता है, उत्पाद होता है व्यय होता है, उत्पाद होता है व्यय होता है, तो सच्चाई के साथ है वो दर्शन सम्यक है तो ज्ञान अपने आप सम्यक होता चला जाएगा और कल्याण की बात हो जाएगी। तो इसी तरह से द्वेष जागा तो इस समय द्वेष वाला चित्त है, सै दो संग वा चित्तंग सै दो संग चित्तंति पजानाति, बस पजानाति केवल जानता है, ये दोष क्यों आ गया, द्वेष क्यों आ गया, द्वेष क्यों आ गया, लेन देन नहीं, तो विपश्यना नहीं है, वो और बातें हैं, एकदम प्रारंभिक कैफे गए की बातें कि जहां धकेल के दूर करो, ये करो। विपश्यना तो बड़ी समझदारी का काम है, आया है इस समय, ये आया है, बस आया है, हमने जान लिया है, आना है और उसका जानना है, कुछ उत्पन्न होना है उसका जानना है, उसका चले जाना है और उसको जानना है, आया है तो आया है, गया है तो गया है, बस इतना ही। पजानाति केवल जानाते नहीं है, मन्यति तो बहुत दूर रह गई, मन्यते में लग जाते तो केवल मान रहा है तो बातें ही नहीं बनती, विपश्यना से लेन देन नहीं, उसका केवल चिंतन मनन करता। जानाति जानता है, पर कैसे जानता है? पजानाति प्रज्ञा से जानता है, और प्रज्ञा यही कि उसके लक्षण को अनुभव से जान रहा है, और उसका लक्षण शरीर और चित्त का लक्षण यही है कि वो अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, और जो अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, उसके प्रति आसक्ति जागी तो दुख है, उसके प्रति मैं मेरे का भाव जागा तो दुख है, तो उसका लक्षण है दुख है, दुख है, और वो मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, ये उसका लक्षण है, वो निस्सार है, उसमें कुछ सार नहीं, ये उसका लक्षण है। तो ये अनित्य है, ये दुख है, ये अनात्मा है, इस लक्षण को जान रहा है तो प्रज्ञा पूर्वक जान रहा है, अन्यथा बिना प्रज्ञा के केवल जानाति होता, पजानाति नहीं होता। तो राग है तो सह रागंग व चित्तं, राग नहीं है तो वीत रागंग व चित्तं, दोष है तो सह दोषंग व चित्तं, दोष नहीं रहा तो वीत दोषंग व चित्तं, मोह है तो सह मोहंग व चित्तं, मोह निकल गया तो वीत मोहंग व चित्तं। जिस जिस समय जैसी जैसी अवस्था है उस समय उसी अवस्था को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है। और संकित्तं वा चित्तं, संकित्तं चित्तंति पजानाति, विक्षित्तं वा चित्तं, विक्षित्तं चित्तंति पजानाति। कभी कभी काम करते करते देखता है कि मन एकदम एकाग्र हो गया, थोड़ी सी दूर में ही सिकुड़ के रह गया, संकुचित हो गया, संक्षिप्त हो गया। कभी देखता फिर बिखर गया, चारों ओर बिखर गया, इधर उधर दौड़ने लगा, तो संक्षिप्त है तो बस संक्षिप्त है, संक्षिप्त है तो खुशियों से नहीं नाचता, विक्षिप्त है तो व्याकुल होकर के रोने नहीं लगता, संक्षिप्त है तो संक्षिप्त है, विक्षिप्त है तो विक्षिप्त है। इसी प्रकार महग्गतंग व चित्तंग, महग्गतंग चित्तं तिपजानाति, अमहग्गतंग व चित्तंग, अमहग्गतंग चित्तं तिपजानाति। ये महग्गत चित्त चार ध्यान के बाद की जो अवस्थाएं आती हैं, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, उसमें अपनी कल्पनाओं के आधार पर अपने मानस को फैलाता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वो दसों दिशाओं में अपने मानस को फैलाता है अनंत की ओर जाता है। तो वो चारों अवस्थाएं, उसमें चित्त छोटा नहीं, उसे फैला लिया तो महग्गत हो गया। छोटा चित्त फैलते ही फैलते फैलते महग्गत, तो महग्गत है तो इतना पर जाने, इस समय महग्गत है, और महग्गत नहीं है छोटी सी दूर में, परित्त है तो परित्त है, बस छोटा चित्त है इस समय, जैसा है वैसा है, न एक को अच्छा माने न एक को बुरा माने। तो महग्गतंग वा चित्तंग, महग्गतंग चित्तं तिपजानाति, अमहग्गतंग वा चित्तंग, अमहग्गतंग चित्तं तिपजानाति, सै उत्तरंग वा चित्तंग, सै उत्तरंग चित्तं तिपजानाति, अनुत्तरंग वा चित्तं, अनुत्तरंग चित्तं तिपजानाति। ऐसा चित्त है जिसे अभी उसके और आगे की अवस्थाएं प्राप्त करनी है, उसके आगे कुछ और है अभी, तो सह उत्तर अभी उत्तर है उसके आगे, और अनुत्तर इसके आगे कुछ जाने, कुछ नहीं है जाने को। मन मानस उस अवस्था पर पहुंच गया कि जिससे आगे कुछ जाने को नहीं है, तो उसको सह उत्तर नहीं है, सह उत्तर है तो सह उत्तर है, अनुत्तर है तो अनुत्तर है, ऐसा उसे जानता है। ऐसे ही समाहितंग वा चित्तंग, समाहितंग चित्तं तिपजानाति, असमाहितंग वा चित्तं, असमाहितंग चित्तं तिपजानाति। मन समाहित हो गया, समाधिस्थ हो गया तो जानता है, समाधिस्थ हो गया फिर बिखर गया, नहीं समाधिस्थ है इस समय तो नहीं समाधिस्थ है, जैसा है वैसा है, जिस समय जैसा है वैसा है। विमुत्तंग वा चित्तंग, विमुत्तंग चित्तं तिपजानाति, अविमुत्तंग वा चित्तंग, अविमुत्तंग चित्तं तिपजानाति। इस समय चित्त विमुक्त है, विकारों से विमुक्त है, तो विमुक्त है, बस इतना ही जानता है। इस समय फिर विकार आए हैं, विमुक्त नहीं है, तो अविमुक्त है, तो अविमुक्त है, जैसा है वैसा है। यूं अपने चित्त को, ये जो चित्त में जाग रहा है इसी के सहारे जानता है, नहीं तो कैसे जानेगा। और जो जाग रहा है, चित्त ने जो धारण किया है, भारत की पुरानी भाषा में उसी को धर्म कहते थे। चित्त ने कुछ धारण किया है, धारे इति धम्म, धारण करता है तो धर्म है। बुराई भी धारण कर सकता है, बुरी चित्त वृत्तियां भी चित्त में धारण होती है, तो उन दिनों की भाषा में वो भी धर्म है, उसका स्वभाव है। और अच्छाई भी धारण कर सकता है, उन दिनों की भाषा में वो भी धर्म है। और धर्म का फिर एक अर्थ हुआ कि जो धारण किया उसका क्या स्वभाव है, जो चित्त वृत्ति हमने धारण की अपने चित्त में, अब उसका क्या स्वभाव है। क्रोध धारण किया तो क्रोध का क्या स्वभाव है। तो अत्तनो लक्षण अत्तनो स्वभाव धारे इति धम्मा, उसका लक्षण उसका स्वभाव वो समझ में आने लगेगा। चित्त ने ये धारण किया और जो धारण किया उसका क्या स्वभाव है। तो यहां तो चित्तानुपश्यना है, इसलिए चित्त ने धारण किया बस इतना ही। इस समय कुछ धारण किया, इस समय नहीं किया, और आगे के पर्व में जाकर के हम समझेंगे उसका स्वभाव क्या है, और वो स्वभाव जो हमारे लिए हानिकारक है उसे कैसे पलटा जा सकता है, ये धम्मानुपश्यना में जानेंगे। चित्तानुपश्यना करते हुए भी वही बात, स्टेशन वो की वो होगी, इति अज्जत्तंग वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, अज्जत्त बहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, भीतर बाहर, बाहर भीतर दोनों। और समुदय धम्मानुपस्सी वा चित्तस्मिं विहरति, वै धम्मानुपस्सी वा चित्तस्मिं विहरति, समुदय वै धम्मानुपस्सी वा चित्तस्मिं विहरति। फिर संवेदना साथ जुड़ गई, सारे के सारे क्षेत्र में, सतिपट्ठान के क्षेत्र में हम संवेदनाओं को अलग नहीं रख सकते। संवेदनाओं को अलग रखा इसका मतलब हमने संप्रज्ञान को अलग रख दिया, और संप्रज्ञान को अलग रख दिया तो इसका मतलब हम स्मृति का काम नहीं कर रहे हैं, स्मृति प्रतिष्ठापित नहीं हो रही है। सतिपट्ठान का अर्थ यही है कि उसके साथ संपजन्य जुड़ा है कि नहीं, प्रतिक्षण संपजन्य जुड़ा है, और संपजन्य जुड़ा है इसका अर्थ इसका अर्थ संवेदनाओं का उदय होना व्यय होना, उदय होना व्यय होना, ये जान रहा है कि नहीं। चित्त है, और चित्त के साथ जैसे ही कुछ जागा उसमें, तो उसके साथ शरीर में एक संवेदना होने लगी, जो धर्म जागा। तो इसी को देख करके कहा गया, सब्बे धम्मा वेदना समोसरणा, जो कुछ धर्म जागता है चित्त में, चित्त में जो कुछ जागे वो संवेदनाओं के साथ प्रवाहमान होने लगता है, जुड़ जाते हैं दोनों। ऐसा हो नहीं सकता कि मन में कुछ जागे और उसका उसका शरीर पर कोई प्रभाव न पड़े, ये असंभव बात है। मन में जो जागेगा, जो धर्म धारण करेगा चित्त, वो संवेदनाओं के रूप में प्रकट होगा। और साधक है तो देखता है, ये देख संवेदनाओं का उत्पाद हुआ व्यय हुआ, उत्पाद हुआ व्यय हुआ, यही समुदय धम्मानुपस्सी, यही वय धम्मानुपस्सी, और आगे जाकर के एक साथ समुदय वय समुदय वय समुदय वय धम्मानुपस्सी विहरति। और आगे ऐसी अवस्था पर पहुंचता है, अत्थ चित्तं, हो चित्त है बस इतना ही, अच्छा है बुरा है कुछ उससे लेन देन नहीं, उसका मूल्यांकन नहीं, संज्ञा काम नहीं कर रही, केवल चित्त है। विज्ञाने विज्ञानमत्तं भविष्यति, केवल विज्ञान जानता है कि चित्त है बस, काफी। ये चित्त मैं हूं, ये चित्त मेरा है, ये चित्त मेरी आत्मा है, फिर उलझ गया। केवल चित्त चित्त है इस अवस्था पर पहुंचेगा तो उसका यथार्थ दर्शन होगा, तो इसके आगे की अवस्था, चित्त के परे की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और जैसे ही इस पर कोई मिथ्या आरोपण करने लगा, अपनी मान्यताओं का आरोपण करने लगा, वहीं गाड़ी रुक जाएगी। एक वैज्ञानिक की तरह सारा काम है, सारा सतिपट्ठान, सारी धर्म की साधना, एक वैज्ञानिक की तरह जो घनीभूत सत्य हमारे सामने आया उसने भ्रांति पैदा की, विपर्यास पैदा किया। हम ठीक से समझ नहीं पाए कि सच्चाई क्या है, हम उसी के टुकड़े 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 किए जा रहे हैं, और पजानाती पजानाती करता है तो अपने आप टुकड़े टुकड़े होते हैं, हमें कुछ करना कराना नहीं पड़ता। अपने आप विभाजन होते होते, विघटन होते होते, विश्लेषण होते होते उसके अंतिम सत्य तक जा पहुंचते हैं। तो एक वैज्ञानिक की तरह जो जो प्रकट हो रहा है उसी को जाने जा रहे हैं, उस पर आरोपण नहीं करते। ये अनित्य का भी, दुख का भी, अनात्म का भी आरोपण करने लगेंगे तो विपश्यना नहीं होगी। अनित्य अनुभव होना चाहिए। देख उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, तो अनित्य अनित्य है। देख इस पे आसक्ति होते ही दुख होता है, ये अनुभव होना चाहिए। बड़ी सुखद संवेदना आई, धारा प्रवाह की अनुभूति हुई, और जैसे ही वो छूटी कि मन बड़ा उदास हुआ, तो इसका मतलब जो धारा प्रवाह की अनुभूति हुई थी उसके प्रति आसक्ति पैदा की, और जो अनित्य है वो तो समाप्त होने ही वाली है देर समेत, वो समाप्त हुई और हम दुखी हो गए, तो दुख समाया हुआ है उसमें। जो दुखद संवेदना है वो तो दुख है ही, प्रत्यक्ष है। जो दुखद नहीं है, सुखद है, अरे इसमें भी दुख समाया हुआ है, क्योंकि आदत पड़ गई उसके प्रति आसक्ति पैदा करने की, तो इसलिए दुख है। यूं खूब समझ में आने लगेगा तो दुख है, ये मैं नहीं, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं, ये शाश्वत नहीं, ये ध्रुव नहीं। शाश्वत ध्रुव इस माने में जरूर है कि उत्पन्न होना और नष्ट होना, उत्पन्न होना और नष्ट होना, ये इसका ध्रुव धर्म है, ये नहीं पलटता, इसका स्वभाव नहीं पलटता। इन तीनों का ये स्वभाव है, शरीर का, चित्त का, चित्त की वृत्तियों का ये स्वभाव है, उत्पन्न नष्ट, उत्पन्न नष्ट, ये इस माने में नित्य है। इसकी अनित्यता नित्य है, और इसके परे की अवस्था की नित्यता नित्य है, वहां पर उत्पाद व्यय होता नहीं। तो कोई कोई भाई जो उलझ जाते हैं कि हमको नित्य का तो दर्शन कराया ही नहीं, अरे यहीं से नित्य का दर्शन शुरू हो गया। ये अनित्य का स्वभाव जो है वो नित्य है, इस अनित्य के स्वभाव के साथ कहीं उलझ न जाए, समझते रहें इसे, समझते 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 उस नित्य का साक्षात्कार हो जाएगा जो चित्त और शरीर के परे है। तो इन सारों के लिए काम करना पड़ेगा। काया की विपश्यना करते हुए, काया है बस इतना ही, और उस पर कोई आरोपण नहीं, काया है। वेदना है तो वेदना है, कोई आरोपण नहीं। चित्त है तो चित्त है, उस पर और कोई आरोपण नहीं। चित्त अति चित्तं तिवापनस्स सती पच्चुपट्ठिता होती, तो ही स्मृति हमारी प्रतिष्ठापित हुई, चित्त पर प्रतिष्ठापित हुई। यावदेव ज्ञानमत्ताय, और वो उसी तरह, और यहां उस अवस्था से आगे बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंचेंगे जहां पर ज्ञानमत्ताय मात्र ज्ञान है, और पटिस्मृतिमत्ताय मात्र प्रतिस्मृति है, माने सजगता है, माने दर्शन है। केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल ज्ञान हमें केवल्य अवस्था तक ले जाएगा। क्या केवल्य अवस्था होती है? कि जिसमें कोई सम्मिश्रण नहीं होता। केवल ज्ञान है, कोई सम्मिश्रण नहीं है इसमें। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो संज्ञा काम कर रही है। संज्ञा काम करना बिल्कुल बंद कर देती है तब केवल ज्ञान होता है। कभी समझेंगे आठों ध्यान तो जानेंगे जो आठवां ध्यान है उसमें संज्ञा बड़ी क्षीण हो गई। नए व संज्ञा, नए संज्ञा आयतन, ये भी नहीं कह सकते कि संज्ञा है, और ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है। इतनी क्षीण हो गई पर उसका निरोध नहीं हुआ, अभी समाप्त नहीं हुए। निरोध हो जाएगा तब संज्ञा काम करना बंद कर देगी। संज्ञा काम करना बंद कर देगी तब पंज्ञा में बदल जाएगी, प्रज्ञा बन जाएगी। तो वही संज्ञा जो ये कहती थी ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पुरुष है, ये नारी है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये भारतीय है, ये अमेरिकन है, सारे समाप्त हो जाएंगे जैसे जैसे इन अवस्थाओं की ओर बढ़ेगा। अरे केवल काया है, क्या इसमें ब्राह्मण है, क्या इसमें शूद्र है, और क्या इसमें भारतीय है, और क्या इसमें अमेरिकन है, क्या इसमें पुरुष है, क्या इसमें नारी है, यूं केवल काया है। तो ये भौतिक पदार्थ का अंतिम सत्य है, इतना ही। इसी तरह से वेदना का यह अंतिम सत्य है, केवल वेदना है, केवल चित्त है, केवल धर्म है। तो उसके साथ संज्ञा काम नहीं कर रही है। अब संज्ञा अनिच्च संज्ञा बन गई, प्रज्ञा बन गई। तो इतना ही ज्ञान है, दर्शन है कि ये काया है, और उसका ज्ञान है कि उत्पाद है व्यय है, उत्पाद है व्यय है, ये इसका स्वभाव है। तो दर्शन सम्यक है, केवल है, और ज्ञान भी सम्यक है, केवल है, तो केवल शुद्धता है ज्ञान की, केवल शुद्धता है दर्शन की, धीरे 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 यही कैवल्य अवस्था निर्वाण तक पहुंचा देगी। अनिश्चितो च विहरति, ऐसी अवस्था में जैसे आते जाएगा अब कुछ आश्रय नहीं रह गया, अनिश्चितो निराश्रय, न चे किंच लोके उपादीयति, अब कोई आलंबन नहीं रह गया जिसके साथ आसक्ति कर सके। एवं भिक्खु भिक्खवे भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सि विहरति अबधम्मानुपस्सना। अनेक पर्व हैं इसके, समझेंगे। पहला है निवरण पब्बंग, निवरण आज की हिंदी में कहते हैं आवरण, कोई पर्दा आ जाए, पुरानी भाषा में कहते हैं निवरण, कोई पर्दा आ गया, ऐसा पर्दा जो हमको सच्चाई न देखने दे। माने मानस की ऐसी अवस्था हो गई, इस तरह का कोई विकार छा गया उस पर कि सच्चाई क्या है, उसका क्या स्वभाव है, उसे समझ नहीं, देखने ही न दे। हमको सत्य देखना है तो जो सत्य हमारे सामने आया, अगर हमारे और उस सत्य के बीच में कोई पर्दा है तो उस सत्य को हम कैसे देख पाएंगे। तो उसी निवरण कहा, ये पांच मोटे मोटे पर्दे होते हैं जिनकी वजह से हम सच्चाई को देख नहीं पाते। 10 दिनों के शिविरों आते हैं तो इतने विवरण से बात नहीं समझाई जा सकती, केवल भूमिका देते हैं, तो जिस भाषा में लोग समझ पाते हैं उसी भाषा में समझाते हैं, तो कहते हैं पांच दुश्मन हैं। बस यही पांच दुश्मनों का वर्णन है यहाँ। कथं च पण भिक्खवे भिक्खु धम्मे सुधम्मानुपस्सि विहरति, धर्म में धर्म की अनुपस्थना कैसे करता है। इद भिक्खवे भिक्खु धम्मे सुधम्मानुपस्सि विहरति पंचसु निवरणेषु, ये पांच निवरणों के आधार पर ये धर्म है, शरीर ने उनको धारण किया है, ऐसे निवरण धारण किए हैं शरीर ने, तो इन निवरणों का दर्शन कर रहा है, इस माने में धम्मानुपस्थना कर रहा है। कथंच पण भिक्खवे भिक्खु धम्मे सुधम्मानुपस्सि विहरति पंचसु निवरणेषु, ये कौन से पांच निवरण हैं जिसमें धर्म में धर्म की विपश्यना की जाती है। इद भिक्खवे भिक्खु संतंग वा अज्जत्तं काम छंदं अत्थिमे अज्जत्तं काम छंदो तिपजानाति, इस समय मेरे चित्त में काम छंद है, बस काम छंद है, इतना ही जानता है, ऐसा ही जानता है, उससे घृणा करके उसे दूर करने का काम नहीं करता, तो विपश्यना नहीं हुई, फिर और कोई साधना हो गई। काम छंद है, क्या होता है अक्सर नया नया साधक जब आता है तो ये दो बड़े दुश्मन हैं, काम छंद और व्यापार। सांसारिक जीव अनेक जन्मों से वासनाओं का गुलाम रहा, माता पिता की वासना की वजह से उत्पत्ति हुई उसका भी असर है, और सारे जीवन भर वासना में ही वासना में लोट पलोट लगाता रहा उसका असर है। तो ध्यान करने के लिए आता है तो वासना के जो गहरे गहरे विकार हैं जागते हैं। अरे कहता है कि ऐसा सामान्यतया हमारे दिनचर्या में कभी इस तरह के वासना के विकार नहीं जागे, अभी क्यों जागते हैं। तो आता है कई साधक साधिकाएं, क्या करें। तो अच्छी बात है, क्योंकि जो इकट्ठा किया है वो सामने आना चाहिए, उसको देखोगे साक्षी भाव से देखोगे तो छुटकारा होगा। तो काम वासना को काम छंद कहा, लेकिन काम का एक अर्थ और भी आगे जाकर के कामनाओं को काम कहा। तो किसी तरह की भी कामना जागती है, माने राग जागता है, तो काम छंद का एक अर्थ राग, काम छंद का बड़ा स्थूल अर्थ काम वासना। तो चाहे काम वासना जागी है तो ये जान रहा है काम वासना जागी है, इस समय मेरे मन में काम वासना का अस्तित्व है, इस समय काम वासना है, इतना जानता है, बस इतना जानता है। कामना जागी है, कोई राग जागा है, इस समय मेरे मन में राग जागा है, बस इतना ही। तो इसी को कहा संतंग है, संतंग वा अज्जत्तंग भीतर काम छंदं काम छंद अत्थि है, अत्थि में अज्जत्तं काम छंदो दिपजानाति, ये जानता है कि इस समय काम छंद है। पहले कैसा चित्त है तो काम वाला चित्त है, राग वाला चित्त है। अब काम है, राग है, उसी पर ध्यान है, धम्म है, धम्मानुपस्सना, अलग नहीं होते, चित्त में ही है वो, कहा है और। लेकिन इस पर महत्व तो इस समय काम छंद है, इस समय वासना है या इस समय राग है, ऐसा जानता है। और ऐसंतंग वा अज्जतं काम छंदं नत्थि मे अज्जतं काम छंदो तिपजानाति, नहीं है, राया अनंत काल तक रहता नहीं, कैसा ही विकार क्यों न हो अनंत काल तक नहीं रहता। हम देखे जा रहे हैं तो उतरता है, उतरता है, उतरता है, और दे सबेर समाप्त हो जाता है। जो आया था किसी बात को लेकर के, काम छंद जागा, काम छंद जागा, राग जागा, देखते 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 चला गया, अब देखता चला गया ना, तो काम छंद नहीं है इस समय, काम छंद नहीं है, ऐसंतंग नहीं है, ऐसंतंग वा अज्जतंग काम छंदंग नहीं है, तो नत्थि मे अज्जतंग काम छंदो तिपजानाति, तो नहीं है, ऐसा जानता है, प्रज्ञा पूर्वक जानता है। फिर क्या होने लगा, ये साधना का गुर, साधना का रहस्य समझना चाहिए। कर्मकांड नहीं बनने पाए तो खूब समझ के करेगा तो कर्मकांड नहीं बनेगा। हमारा काम केवल जानना है और कुछ नहीं करना। तो उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, इसका स्वभाव है, अपने स्वभाव से नष्ट होगा, हम इसमें कुछ करते कराते नहीं। हम केवल देख रहे हैं तो इसका मतलब कि हम नया नहीं जगा रहे, अपनी ओर से नई प्रतिक्रिया करके जगा रहे हैं तो हम देख नहीं रहे, हम देख रहे हैं तो नया नहीं जगा रहे हैं, और पुराने आए गए आए गए, तो आए गए आए गए, अरे ये इनका स्वभाव है। उपादवय धम्मिनो अनिच्चावत संखारा, अरे अनित्य है, जो जो संस्कार माने जो कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ निर्माण होता है वो नष्ट होने के लिए होता है। तो इस समय काम छंद का निर्माण हुआ, नष्ट होने के लिए हुआ, देख खत्म हो गया ना, काम छंद आया चला गया ना, काम छंद इसको देखता है, देखता है इसको, तो अनित्य है, अनित्य है। उत्पाद होना, व्यय हो जाना, उत्पाद हो जाना, ये उसका धर्म है, इस धर्म को देख रहा है। चित्त ने क्या धारण किया, तो चित्त का क्या धर्म है, चित्त ने जो धारण किया, चित्त ने काम छंद धारण किया, काम छंद का क्या धर्म है, अनित्य है, उत्पन्न होना नष्ट हो जाना, तो इसको देखता है। आया है वो देख लिया, चला गया वो देख लिया, क्योंकि इस तरह साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से देखने का काम कर रहा है। अब जो पुराने जमा थे उनके निकलने का समय आ गया। हम एक पर एक नए संस्कार नए बनाते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे तो ढेर पर ढेर लगाते चले जाएंगे, पुराना उभरने न पाएगा। तो अंदर ही अंदर जो अनुशय क्लेश हैं, वो विकार जो अनुशय हैं, अनुशय माने जो सोए हुए हैं, सुषुप्त है, शय सोया हुआ, अनुशय अनुसरण कर रहा है, चित्त धारा के साथ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जो शरीर के किसी हिस्से में दबा हुआ पड़ा है, ऐसा नहीं होता। चित्त धारा के क्षण प्रतिक्षण जो नया चित्त बना, पुराना नष्ट हुआ, नया बना, पुराना नष्ट हुआ, उसके साथ साथ ये विकार चल रहे हैं, सोए सोए प्रसुप्त अवस्था में चल रहे हैं, जिसको आज की भाषा में कहें अचेतन चित्त में चल रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड में चल रहे हैं, जीवन धारा के साथ चल रहे हैं, चित्त धारा के साथ चल रहे हैं। अब उनकी बारी आती है, उनमें से कुछ सिर उठाना शुरू करता है तो कहा यथाच अनुपन्नस्स काम छंदस्स उत्पादो होती तंच पजानाति। अब ये अनुशय काम छंद इतने दबे हुए पड़े, इतने जन्मों के पड़े, अब उनकी बारी आए, वो सिर उठाने लगे जो पहले नहीं उत्पन्न हुए थे। ये तो ताजा इस समय के हमने जो इकट्ठे किए, इस समय हम चिंतन कर रहे हैं, और पिछले निकट भूतकाल के जो थे वो उत्पन्न होते थे, नष्ट होते थे, और अब इनकी अनुशय की बारी हुई जो कि नहीं निकल रहे थे। अब क्योंकि हम संता से देखे जा रहे हैं तो पुराणों की उदीर्णा होगी ही, ये कुदरत का नियम है। हमने संवर जो कर लिया, नया नहीं बना रहे हैं तो पुराणों की उदीर्णा होगी ही, तो ये पुराणों की उदीर्णा है। यथा च अनुपन्नस्स काम छंदस्स उत्पादो होती तंच पजानाति, उनका उत्पाद हुआ है।
यथाच उपन्नस्य काम छंदस्य पहानंग होते तंच पजानाते। उत्पन्न हुए हैं खूब दबे हुए विकार ऊपर उठे हैं और देखते 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 उनका प्राण हो गया, नष्ट हो गए, प्राण हो गया। कैसे प्राण होता है? उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, तो नष्ट होके फिर उत्पन्न होता है, नष्ट होके फिर उत्पन्न होता है। प्राण होता है तो जड़ें निकलती हैं। आरंभ तो प्राण भी ऐसे ही होता है कि तदंग प्राण, माने इस समय मैंने कोई नया विकार नहीं जगाया तो तदंग प्राण इस समय उसका प्राण हुआ। जो क्रोध जागा था कि द्वेष जागा था, मैंने नया नहीं बनाया तो उसका प्राण हुआ। लेकिन अभी तो बहुत नीचे हैं। और जब शील सदाचार का पालन करते हैं तब कहते हैं तदंग पहाण कर रहा है। शील का पालन करता है, किसी की हत्या नहीं करता तो क्रोध नहीं जगाता, हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, लोभ नहीं जगाता, तो उस समय के लिए, उस क्षण के लिए उसने अपने मन में इन विकारों को दूर रखा। तदंग पहाण, चित्त एकाग्र होने लगा और सम्यक रूप से होने लगा तो जड़ों को छेड़ने लगा। तो उसको कहा विखंबन पहाण, जैसे खंबे को हिला दे, बड़ा दृढ़ खंबा है, हिला दिया अब उसको तो विखंबन पहाण। प्राण होते हैं नीचे वाले ऊपर आने लगे अब। और उसके बाद समुच्छेद पहाण, उसकी जड़ें निकाल के बाहर फेंक दी। तो ये जो जड़ें निकालने का काम है ये विपश्यना से होता है। देखे जा रहे हैं, बस देखे जा रहे हैं, तो समुच्छेद पहाण, समुच्छेद पहाण। ये होते 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 आगे बढ़ेगा तो यथाच उपन्नस्य काम छंदस्य पहाणंग होती तंज बजानाति, और यथाच पहीनस्य काम छंदस्य आयतिंग अनुपादो होती तंज बजानाति। इस सच्चाई को भी देखता है कि जो चले गए अब आयतिंग भविष्य में आने वाले नहीं, क्योंकि जड़ों से चले गए। जड़ों से चले जाते हैं तो ही मुक्त होता है। राग जड़ों से चले जाए तो सही माने में वीत राग होता है। द्वेष जड़ों से चले जाए तो सही माने में वीत द्वेष होता है। मोह जड़ों से चले जाए तो सही माने में वीत मोह होता है। आश्रव जड़ों से चले जाए तो सही माने में वीत आश्रव होता है, क्षीण आश्रव होता है, अनाश्रव होता है। तो जड़ों से चले गए, जड़ों से चले गए तो बड़ी प्रशब्दी आती है। तो एक प्राण की एक अवस्था पटिपस्सदी, बड़ी प्रशब्दी। व्याकुलता के कारण तो यही थे, ये निकले तो बड़ी प्रश्रब्दी। ये सारी निर्वाणिक अवस्था के नजदीक पहुंचने की अवस्थाएं हैं। आगे जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक उसे महसूस नहीं कर पाएंगे, तब तक उसे समझ नहीं पाएंगे। पटिपस्सदे पहाण, फिर निस्सरण पहाण, निकल गया इस सारे प्रपंच के बाहर, नाम रूप शरीर और चित्त के प्रपंच के बाहर निकल गया। और वो जो प्रहाण हुआ, अरे हमेशा के लिए प्रहाण हो गया, अब ऐसी अवस्था आ नहीं सकती। जो व्यक्ति पहली बार निर्वाण का साक्षात्कार करता है तो अमुक अमुक विकार जड़ों से निकल गए तो निर्वाण का साक्षात्कार हुआ। निर्वाण का साक्षात्कार हुआ फिर इंद्रिय जगत में आया, इस व्यक्ति के लिए असंभव हो गया कि उस प्रकार के विकार जो जड़ों से निकल गए हैं और जो कि अधोगति की ओर ले जाने वाले हैं वो दोबारा जाग जाए, असंभव हो गया। ये कुदरत का अपना नियम है, उसकी प्रकृति ही बदल गई। अब उसकी प्रकृति ऐसी हो ही नहीं सकती कि फिर जगा ले, वो जगेगा ही नहीं। पुराने सारे निकल गए, नए जगेगा नहीं, ऐसे ही अगली अवस्था पर आएगा, सगदागामी होगा। तो और इतने प्रकार के विकार निकल गए, अब निर्वाण की अवस्था में पहुंचा तो ये वापस आएंगे नहीं। अनागामी हुआ, इतने निकल गए वापस आएगा नहीं। अरहंत अवस्था पर पहुंचा तो सारे निकल गए, एक विकार नहीं रह गया। और वापस इंद्रिय जगत में आया तो कुछ जागने को नहीं, कोई ऐसा विकार जागे ही नहीं सकता। तो इसी को कहा यथा चपही नस्य काम छंदस्य आयतिं अनुपादो होती तंज पजानाति। ये जो काम छंद है अब नहीं जाग सकता, जो चला गया हमेशा के लिए चला गया। उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निरुज्झन्ति, निरुद्ध हो गया, समाप्त हो गया। आज तो दबा देने को निरोध कहने लगे भारत में, उन दिनों की पुरानी भाषा में निरोध का अर्थ होता था जड़े निकाल दे। उपजित्वा निरुज्झन्ति ते संग भूप समो सुखो, उसका उपशमन हुआ तो सही माने में सुख मिला। निब्बानंग परमंग सुखं, निर्वाण का परम सुख का साक्षात्कार हुआ क्योंकि जड़ें निकल गई। ऐसे ही संतंग वा अज्जतंग व्यापादंग अथ्य मे अज्जतंग व्यापादोति पजानाति, दूसरा दुश्मन, दूसरा आवरण, किसी ने किसी से कोई मनमुटाव है, किसी बात को लेकर के बड़ा क्रोध है, द्वेष है, साधना में बैठता है, तो निकट भूतकाल की घटनाएं, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो हमारा दुश्मन है, वो ऐसा, सब जागती हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर ये मैल रहता है, जैसे काम छंद का, वासनाओं का मैल उभर करके आता है, राग का मैल उभर करके आता है, ऐसे ही ये व्यापाद का, क्रोध का, ऐसा कह दिया, उसने ये कर दिया, आता है, उसे भी देखता है, इस क्षण मेरे चित्त में व्यापाद जागा है, संतंग वा अज्जतंग व्यापादंग, जागा है तो अथ्य में अज्जतंग व्यापादो तिपजानाति, ये द्वेष जागा है, ये है इस समय, ऐसा जानता है, और पढ़ते उतरते 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 जो जागा था तो चला गया, उपज्जित्वा उत्पादवय धम्मिनो, उत्पाद हुआ व्यय हुआ, उत्पाद हुआ व्यय हुआ, तो व्यय हुआ, तो असंतंग वा अज्जतंग व्यापादंग नथिमे अज्जतंग व्यापादो तिपजानाति, अरे इस समय व्यापाद नहीं है, जो व्यापाद आया था, जो क्रोध आया था, जो द्वेष आया था, जो दौरमनुष्य आया था, निकल गया, दूर हो गया, फिर इसके बाद ये ताजा जो आया था वो चला गया, हम समता में रहे, तो पुराने जो दबे हुए थे, अनुशय थे, उनकी बारी आई, तो यथाच अनुपन्नस्य, जो अब तक नहीं उत्पन्न हुए थे क्योंकि सोए हुए थे, दबे हुए थे, यथाच अनुपन्नस्य व्यापादस्य उत्पादो होति, अब आई उनकी बारी, वो ऊपर उठने लगे, तंच पजानाति, उनको भी केवल जानता है और कुछ नहीं करता, यथाच उपन्नस्य व्यापादस्य पहानंग होति तंच पजानाति, उसी तरह उसकी भी जड़ें निकलने लगे, और सारी जड़ें निकल गई तो यथा चपही नस्य व्यापादस्य आयतिंग अनुपादो होति तंच पजानाति, एक एक पैराग्राफ हमको नितांत विमुक्त अवस्था तक पहुंचाने वाला, तो जो काम होता है थोड़े में एक एक सेंटेंस में एक एक स्टेशन बताई गई और अंतिम अवस्था की जहां दोबारा आने वाला नहीं है, तो वो निर्वाणिक अवस्था प्राप्त करके, अरंत की अवस्था प्राप्त करके अब नितांत मुक्त हो गया, राग आने वाला नहीं है, अब द्वेष आने वाला नहीं है, ऐसे ही संतंग वा अज्जतंग थिन मिद्धंग अथ्य में अज्जतंग थिन मिद्धंग तिपजानाति, बड़ा आलस आता है, अपना तीसरा दुश्मन जो बार बार शिविरों में सुनते हैं, अंदर जो विकार आए थे वो निकलना चाहते नहीं और हम विपश्यना करते हैं, उनको निकलना पड़ेगा, उनको अच्छा लगता नहीं तो दुलत्ती मारते हैं भीतर से, ये क्या करने लगा, हमें नहीं अच्छा लगता, तो एक दुलत्ती ये कि आलस आता है, शरीर बड़ा आलसी होता है, तंद्रिल होता है, मानस बड़ा आलसी होता है, तंद्रिल होता है, इसी को थिन मिद्धम कहते हैं, ऐसंतंग वा अज्जतंग थिन मिद्धंग नथ्यमे अज्जतंग थिन मिद्धंग तिपजानाति यथाच अनुपन्नस्य थिन मिद्धस्य उत्पादो होति तंच पजानाति यथाच उपन्नस्य थिन मिद्धस्य पहानंग होति तंच पजानाति यथाच पहीनस्य थिन मिद्धस्य आयतिं अनुपादो होति तंच पजानाति, इसके थिन मिद्ध के, आलस्य के, प्रमाद के, इसके भी न जाने कितने संग्रह पुराने हैं, सब उभर उभर के आएंगे और निकल जाएंगे, संतंग वा अज्जतंग उद्धच्च कुक्कुच्चंग अथ्य में अज्जतंग उद्धच्च कुक्कुच्चंग तिपजानाति, पुरानी भाषा है, उद्धच्च उद्धत होना, औद्धत्य बेचैनी, काम करने बैठा कि बेचैनी शुरू हुई, काम करने बैठा कि बेचैनी शुरू हुई, और कुक्कुच्च माने रोना आया, अरे देख मुझसे काम भी नहीं होता, देख मुझसे ये गलती हो गई, देख मुझसे ये गलती हो गई, देख मुझसे ये काम नहीं होता, मुझसे ये नहीं होता, तो ये रोना, व्याकुल होना, पश्चाताप करना, ये सारे के सारे हमारे दुश्मन हैं, आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो धर्म में ऐसा हुआ तो उसको भी देखता, अच्छा उद्धच्च औद्धत्य आया है, ये रोना आया है, ये व्याकुलता आई है, ये पश्चाताप का भाव आया, बस उतना ही उसको देखता है, और यूं देखते देखते असंतंग वा अज्जतंग उद्धच्च कुक्कुच्चंग नथ्य में अज्जतंग उद्धच्च कुक्कुच्चंग तिपजानाति, इस समय नहीं है, यथाच अनुपन्नस्य उद्धच्च कुक्कुच्चस्य उत्पादो होति तंच पजानाति, अब वो दबे हुए अनुशय निकलने लगे तो उनको देखता है, यथाच उपन्नस्य उद्धच्च कुक्कुच्चस्य पहानंग होति तंच पजानाति, उभर उभर के आते हैं और उनकी निर्जरा होती है, उभर उभर के आते हैं, उनका क्षय होता है तो छुटकारा हुए जा रहा है। सारों का छुटकारा हो जाए तो यथा च पही नस् उद्धच्च कुक्कुच्चस् आयतिं भविष्य में अनुपादो होती तंच पजानाति। अब वो जागने वाले नहीं, छुटकारा हो गया उनसे। फिर पांचवा दुश्मन, पांचवा आवरण, संतंग व अज्जतंग विचिकिच्छं अथ्य में अज्जतंग विचिकिच्छाति पजानाति। विचिकिच्छा शक है, संदेह है, होता ही है। धर्म की गंगा है प्यास बुझाने के लिए। हर समाज के व्यक्ति आते हैं, प्यासे तो सभी हैं, दुखियारे तो सभी हैं। धीरे धीरे लोगों को पता लगता है कि ऐसी धर्म की गंगा है जिसमें कोई सांप्रदायिकता का बंधन नहीं, जिसमें कोई जात पात का बंधन नहीं, जिसमें कोई मान्यता का बंधन नहीं, तो और लाभ तुरंत देती है, आशु फलदायी अभी फल देती है, तो लोग आते हैं। सही रूप में, शुद्ध रूप में सिखाया जाए तो तत्काल फल मिलता है, तो लोग आते ही हैं। आते हैं लेकिन बेचारे अपने अपने पूर्व परंपराओं के, अपनी मान्यताओं के लेप लेकर के आते हैं। किसी किसी का लेप बहुत ज़्यादा होता है, उसको बेचारे को ज़्यादा कठिनाई होती है। किसी का लेप कम होता है तो जल्दी इस लेप के बाहर निकल जाता है। तो अपनी मान्यताओं का जो लेप है वो बार बार शंका पैदा करता है, संदेह पैदा करता है, ये मैं क्या करने लगा, बात तो बहुत ठीक है, ये करते करते मेरे विकार निकलते हैं, दो शिविर कर लिए, तीन शिविर कर लिए, विकार निकले हैं, क्रोध मेरा पहले से कम हुआ है, वासना पहले से कम हुई है, अहंकार पहले से कम हुआ है, ये विकार जो मुझको बहुत व्याकुल बनाते थे ये कम हुए हैं, जड़ से नहीं निकले अभी लेकिन कम हुए हैं, प्रत्यक्ष है। तो साबुन है, अपना काम करती है, कपड़े को धोती है, सारे कपड़े का मैल, पूरा मैल नहीं निकाल पाई तो भी जितना निकाल पाई, उससे विश्वास होता है कि करते जाएंगे तो आगे निकलता चला जाएगा। लेकिन सारी बात ठीक होते हुए भी, अरे मेरी आत्मा का क्या हुआ, वो बेचारी आत्मा की तो कोई बात ही नहीं ना, अरे मेरे परमात्मा क्या हुआ, बेचारा परमात्मा कोई पूछता ही नहीं उसे, ये कैसी बात हुई, तो घबराता है कि कहीं मैं नास्तिक तो नहीं बन रहा, अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है विकार निकल रहे हैं, मैं वीतराग हो रहा हूँ, वीतद्वेष हो रहा हूँ, वीतमोह, सारी बात ठीक है, मैं मुक्त हो रहा हूँ विकारों से, ये भी ठीक है, पर नास्तिक हो रहा हूँ ये तो गलत बात है ना, आत्मा को नहीं मान रहा, परमात्मा को नहीं मान रहा, या इस तरह की और बातें, अमुक हमारा कर्मकांड है वो छूट गया ना, वो छूट गया तो बड़ा दोष हो गया, ये कर्मकांड नहीं कर रहा ना, ये अमुक बात नहीं कर रहा ना, ये इस तरह के जंजाल भिन्न भिन्न संप्रदाय से आने वाले लोगों के सबके मन में होता है, ऐसा नहीं है पर होता है। जिनके मन में होता है उनके लिए दीवार खड़ी हो गई, कैसे काम करेगा। स्पष्ट है काम बड़ा अच्छा है, इससे लाभ होता है, लेकिन मेरी मान्यता का क्या हुआ, मेरी मान्यता की चर्चा क्यों नहीं होती, मेरी मान्यता को यहां क्यों नहीं माना जा रहा, काहे नहीं उसको जोड़ दूं, उसको जोड़ दूं, ये भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, यूं उलझाता है अपने आप को। तो ये शंकाएं, ये संदेह, और हजार प्रश्न आते हैं, ढेर लगते हैं प्रश्नों के, कहने वाला, उत्तर देने वाला मुस्कुरा के उत्तर दे देता है, लेकिन खूब जानता है कि इन उत्तरों से किसी तरह का संतोष होने वाला नहीं है। इन उत्तरों से ये सारे संशय, ये सारी शंकाएं, ये सारी विचिकित्साएं जो अपनी मान्यताओं के कारण मन में जागी हुई हैं, इन उत्तरों से उनका समाधान होने वाला नहीं है, अपने अनुभव से जानता हूं होने वाला नहीं है। इनका समाधान होता है देखते 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 अपने आप निकल गई, अरे शंका का नामो निशान नहीं रह गया। पहली डुबकी जब लगती है निर्वाण की, तो जो हमारे अनेक विकार उसमें जड़ से निकल गए, उसमें से ये एक विकार है विचिकित्सा का, जड़ से निकल जाएगा, तो जड़ से निकल जाएगा तो निकलता चला जाना चाहिए ना, तब वो निर्वाणिक अवस्था आएगी। निर्वाणिक अवस्था में डुबकी लगने के पहले ही विचिकित्सा समाप्त हो जाएगी, शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। डुबकी लग के बाहर आया तो सारा मार्ग देख गया ना, अब संदेह को जगह ही नहीं, अब संशय को जगह ही नहीं, तो विचिकित्सा नहीं रही इस आदमी में। ये एक लक्षण है श्रोतापन्न का, श्रोत में पड़ गया, पहली बार निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया, अब इसको क्या संदेह, देख लिया ना सारा मार्ग, अनुभूति से देख लिया, अंतिम अवस्था तक देख गया, इसको कहां। तो ये विचिकित्साएं, ये शंकाएं, ये संदेह प्रारंभिक अवस्था में आने स्वाभाविक हैं। किसी पर बहुत ज्यादा लेप है अपनी मान्यताओं के, उनके ज्यादा आती हैं, जिनके कम लेप हैं उनके कम आती हैं, पर देर सवेर समाप्त तो होगी ही, कब होगी, जबकि उसको देखते चले जाएंगे। इसी तरह से इति नथ्य में ऐसंतंग वा अज्जतंग विचिके चंगनत्य में अज्जतंग विचिके छायति पजानाति। जिस समय नहीं है तो नहीं है, है तो है। यथाच अनुपन्नाय विचिकिच्छाय उपादो होती तंच पजानाति। बहुत दबे हुए अनुशय के विचिकिच्छाएं जागती हैं, ये देखता है। यथाच उपन्नाय विचिकिच्छाय पहानंग होती तंच पजानाति। उनका प्रहान हुआ उसे देखा। यथाच पहीनाय विचिकिच्छाय आयतिं अनुपादो होती तंच पजानाति। ऐसी शंकाएं अब नहीं आ रही, इसको देख रहा है, जड़ें निकल गई इसकी। यूं इति अज्जतंग वा धम्मे सुधम्मानुपस्सि विहरति बहिद्धा वा धम्मे सुधम्मानुपस्सि विहरति अज्जत बहिद्धा वा धम्मे सुधम्मानुपस्सि विहरति। और फिर इसी तरह समुदय धम्मानुपस्सि वा धम्मे सुविहरति वै धम्मानुपस्सि वा धम्मे सुविहरति समुदय वै धम्मानुपस्सि वा धम्मे सुविहरति। वेदनाओं के साथ देख रहा है, उत्पाद वे दागा धर्म है, राग जागा है भीतर, माने एक स्वभाव है उसका। क्या स्वभाव है? उत्पाद होता है, व्यय होता है। ये उत्पाद होता है, व्यय होता है, हमें अनुभव हो रहा है कि नहीं? तो वेदनाओं के साथ जुड़ गया तो अनुभव हो रहा है, देख उत्पाद हुआ, ये वेदना उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई। संप्रज्ञान से जान रहा है, उत्पन्न हुई नष्ट हुई। तो जो धर्म जागा था, राग जागा कि द्वेष जागा कि विचिकिच्छा जागी, कि जो जागा वो शरीर पर होने वाली संवेदना के साथ जागा, और संवेदना को देख रहे हैं साथ साथ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, इस समय राग है या इस समय द्वेष है या इस समय विचिकित्सा है, जो है, और संवेदना को देख रहे हैं, अनित्य है, अनित्य है। जो जागा है सो भी अनित्य है, और जो संवेदना के रूप में प्रकट हो रहा है ये अनुभूति के स्तर पर अनित्य है। क्यों? देखते 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 उससे छुटकारा होता है। तो वही समुदय धम्मानुपस्सि वै धम्मानुपस्सि, और फिर समुदय वै धम्मानुपस्सि विहरति अति धम्माति। ये धर्म है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म नहीं, ये धर्म है। चित्त ने ये धारण किया है, जो धारण किया है उसका ये स्वभाव है। बस पुरुष हो, नारी हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, भारतीय हो, बंगाली हो, अमेरिकन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये धर्म है। कुदरत का कानून सब पर एक जैसा लागू होता है। ये केवल बुद्धि से स्वीकार कर लेने से कि ये सार्वजनीन धर्म है, कुछ नहीं बनता। फिर हो सकता है कि एक सांप्रदायिक मान्यता में उलझ जाओगे, यही अनुभूति पर उतरेगा तो कल्याण की बात हो जाएगी। तभी ये बात समझ में आएगी कि न पुरुष और नारी में कोई भेद है, और न ब्राह्मण और शूद्र में कोई भेद है, और न कोई भारतीय या पाकिस्तानी में भेद है, न प्राणी प्राणी सारे एक से, ऐसे ही शरीर और चित्त का प्रपंच सब में चल रहा है, और अपने उस स्वभाव की वजह से अज्ञानी हैं तो गांठे पर गांठे बांधे जा रहे हैं और अपना दुख बढ़ाए जा रहे हैं। भीतर का ज्ञान जाग गया, विपश्यना ज्ञान जाग गया, संप्रज्ञान जाग गया, तो गांठे पर गांठे खुलती जा रहे हैं, खुलती जा रही हैं, मुक्त हुए जा रहा है। ये कानून है, ये नियम है, ये विरित है, ये बात समझ में आने लगी। इसी को धर्म। अति धम्मा वह पनस्स सती पच्छुपट्ठिता होती। ये जागरूकता है, ये स्मृति है, उस पर प्रतिष्ठापित होती है सच्चाई पर। तब तक यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिसतिमत्ताय अनिश्चितो च विहरति न चैकिंच लोके उपादीयति एवं भिक्खु भिक्खवे भिक्खु धम्मे सुधम्मानुपस्सि विहरति पंचसु निवरणेषु। ये पांच जो निवरण है, आवरण है, इनका आलंबन बना करके धर्म में धर्म की विपश्यना करता है। खंद पब्बं अगला पर्व। पुनच परंग भिक्खवे भिक्खु धम्मे सुधम्मानुपस्सि विहरति पंचसु उपादान खंदेषु कथंच पण भिक्खवे भिक्खु धम्मे सुधम्मानुपस्सि विहरति पंचसु उपादान खंदेषु। ये पांच उपादान खंदों के धर्म विपश्यना कैसे होती है? क्या पांच उपादान खंड 10 दिनों के शिविर में सुनते आए हैं? ये पांच स्कंद है। एक स्कंद, तो स्कंद माने एक समूह, तो एक समूह तो इन परमाणुओं का है, ये भौतिक शरीर का है, तो ये भौतिक शरीर का, जिसे रूप कहा, ये रूप का एक स्कंद। और चार स्कंद मानस के, जिन्हें उन दिनों की भाषा में नाम कहते थे, नाम के चार स्कंद विज्ञान है, संज्ञा है, वेदना है, संस्कार है। ये पांचों के पांच एकत्र हुए तो पंचस्कंद हुआ, और ये पंचस्कंद स्कंद इनके प्रति जो उपादान जागा माने आसक्ति जागी, क्योंकि इन पंच स्कंदों को ही मैं माने जा रहा है, मेरा माने जा रहा है, मेरी आत्मा माने जा रहा है, मेरा अपनापा माने जा रहा है, तो आसक्ति जागती है, इन्हीं के प्रति आसक्ति जागती है। हजार बुद्धि के स्तर पर कहता रहे शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, ये चित्त मैं नहीं, मेरा नहीं, भीतर देखेगा तो बहुत गहरा मैं मेरा है और बहुत गहरी आसक्ति है, तो वही उपादान, इन पांचों के प्रति उपादान है, आसक्ति है। तो ये पांच उत्पन्न हैं और उन पर आसक्ति पैदा कर रहा है, उस आसक्ति से और पांच स्कंद बने जा रहे हैं, पांच स्कंद बनते हैं, आसक्ति आती है, आसक्ति आती है और पांच स्कंद बनते हैं, यही भव प्रवाह चलता है। एक भव से दूसरे भव, एक क्षण से दूसरे क्षण, पांच स्कंद समाप्त हुए दूसरे खड़े हो जाएंगे, पांच स्कंद समाप्त हुए दूसरे खड़े हो जाएंगे, और अगर आसक्ति नहीं टूटी तो मृत्यु के समय ये पांच स्कंद जो छूटे फिर नए पांच स्कंद लेकर के धारा आगे बहने लगेगी। तो ये जो विशेष सर्कल चल पड़ा उसको देखता है साधक, ये पांच स्कंद क्या हैं, इनके बारे में विपश्यना करता है। इद भिक्खवे भिक्खु क्या करता है, इति रूपं, ये रूप है, रूप माने कोई आकृति नहीं, रूप माने परमाणुओं का पुंज, उन दिनों की भाषा में रूपपति इति रूपं, प्रतिक्षण जो नष्ट हुए जा रहा है उसको रूप कहते थे, तो रूपं परमाणुओं का पुंज, इति रूपं, इति रूपस्य समुदयो, देख इसका उत्पाद हो रहा है, इति रूपस्य समुदयो, इति रूपस्य अथंगमो, ये देख समाप्त हुआ, और इसी तरह से बाकी और चार, इति वेदना, इति वेदनाय समुदयो, इति वेदनाय अथंगमो, इति संज्ञा, इति संज्ञाय समुदयो, इति संज्ञाय अथंगमो, ऐसे ही इति संखार, इति संखारानं समुदयो, इति संखारानं अथंगमो, इति विज्ञानं, इति विज्ञानस्य समुदयो, इति विज्ञानस्य अथंगमोति। अवस्था वो की वो है, आरंभ होगा इसी तरह से कि देख ये रूप जागा, ये शरीर प्रतिक्षण उत्पन्न हो रहा है, परमाणु उत्पन्न हुए जा रहे हैं, नष्ट हुए जा रहे हैं, उपादवे धम्मिनो, उपादवे धम्मिनो, ऐसा होते होते निरुद्ध अवस्था पर पहुंचेगा, अथंगमो, अस्त हो गया, अब है ही नहीं, तो निर्वाणिक अवस्था ही तो है ही नहीं, इस अवस्था को भी देखता है। ऐसे ही ये विज्ञान है, संज्ञा है, वेदना है, संस्कार है, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, अस्त हो गए, निर्वाणिक अवस्था प्राप्त हो गई, तो है नहीं, इसको भी देख लिया कि वहां है ही नहीं, तो पांचों स्कंदों के शरीर और चित्त के परे की अवस्था को देख गया, इसी को कहा अथंगमो। इति अज्जत्तं बाधम्मेषु धम्मानुपस्सि विहरति, बहिद्धा बाधम्मेषु धम्मानुपस्सि विहरति, अज्जत्त बहिद्धा बाधम्मेषु धम्मानुपस्सि विहरति। उसी तरह उन्हीं स्टेशनों पर से गुजरता है, और समुदय धम्मानुपस्सि बाधम्मेषु विहरति, वै धम्मानुपस्सि बाधम्मेषु विहरति, समुदय वै धम्मानुपस्सि बाधम्मेषु विहरति, अत्ति धम्माति, ये धर्म है। खूब समझ में आया, ये धर्म है। पांचों स्कंदों को टुकड़े कर करके देख लेगा, बहुत ऊंची अवस्थाओं में जाके देखा जाता है। अब तो मोटे मोटे रूप में हम विभाजन कर पाते हैं, आगे जाकर के अवस्था आएगी, एक एक परमाणु अलग 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 अलग, ये विज्ञान अलग 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 अलग, संज्ञा वेदना संस्कार खूब मालूम होने लगेंगे। जब तक ये टुकड़े नहीं होंगे और ये अनागामी से अरहंत की अवस्था के बीच की जो अवस्था है उसमें ये टुकड़े होने शुरू होते हैं, वो टुकड़े जब होने शुरू होंगे तब सही माने में अनात्म समझ में आएगा। इतने तो एक धोखा चलेगा, काम भी कर रहा है, नहीं लगता तो नहीं, कोई आत्मा तो ऐसी लगती नहीं है, कोई मैं जैसा लगता नहीं, मेरे जैसा लगता नहीं, फिर भी ये विज्ञान है, ये विज्ञान को आत्मा मानता चलेगा, ये तो मैं हूँ, देख मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ, मैं चख रहा हूँ, मैं स्पर्श कर रहा हूँ और मैं चिंतन कर रहा हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये विज्ञान कायम रहता है। बाकी उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, और आगे की अवस्था में जाते 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 बहुत स्पष्ट मालूम होगा कि विज्ञान एक नहीं है, छह विज्ञान है अलग अलग, जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, चक्षु विज्ञान केवल चक्षु विज्ञान का काम करेगा, श्रोत विज्ञान केवल श्रोत विज्ञान का काम करेगा, हर इंद्रिय का अपना ज्ञान अपना विज्ञान, और वो सिर उठाता है तो उसी इंद्रिय पर क्या घटना घटी कहता है, इसके अतिरिक्त नहीं। और देखेगा कि उस अवस्थाओं में जाते जाते निरुद्ध हुआ, ये श्रोत का विज्ञान निरुद्ध हुआ, सुनना बंद हो गया, ये इंद्रिय समाप्त हुई। अगर मैं कायम होता तो सुनता ना, क्यों नहीं सुनता मैं, ये विज्ञान का नष्ट हुआ, ये उत्पाद वे धर्म वाला है नष्ट हुआ, चक्षु विज्ञान नष्ट हुआ, अब नहीं देख पाता। तो यूं जब निर्वाणिक अवस्था की ओर जा रहा है तो एक 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 इंद्रिय समाप्त होते होते, अरे कहाँ विज्ञान, जिसको मैं मान रहा था उसका भी अस्तित्व नहीं ना, निर्वाण में डुबकी लगाई तो सब्बे धम्मा अनत्ता। जहां तक संस्कारों का सवाल है, जो चीजें बन रही हैं नाम और रूप के क्षेत्र में, लोकीय क्षेत्र में, तो सब्बे संखारा अनिच्चा, वो सब अनित्य हैं, सब्बे संखारा दुखा, वो दुख हैं, और जहां अनात्म की बात आई तो सब्बे धम्मा अनित्य, माने इस ओर का निर्वाण की इस ओर के जितने धर्म हैं वो सारे के सारे अनात्म हैं, मैं नहीं मेरा नहीं, और उसके परे की भी अनुभूति हो गई, वहां भी मैं नहीं मेरा नहीं, तो सब्बे धम्मा अनत्ता अनुभव होगा उस दिन, ये अनात्म स्थापित होगा। इतने तो धीरे 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 आत्मभाव टूट रहा है, अहंकार टूट रहा है, बड़े कल्याण की बात हो रही है, क्योंकि अहंकार नहीं टूटे, आत्मभाव नहीं टूटे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने इस मान्यता को लेकर चिपकाव में बैठे रहते हैं, हम देखते हैं उतनी कठिनाई होती है उनको आगे बढ़ने में। तो ये धीरे धीरे टूटे, आत्मभाव टूटे, अहम भाव टूटे, अहंकार ममंकार निकलना शुरू हो तो आगे की प्रगति हो। तो इस माने में ये पंचखंड बड़ा काम करता है। आयतन पब्बंग, आयतन आज की हिंदी में भी कहते हैं खिड़कियों को, आयतन है, खिड़की हैं, दरवाजे हैं, जिससे बाहर की सच्चाई का हम दर्शन कर सकते हैं। तो ये इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है और मन है। ये छह इंद्रियां हैं, छह दरवाजे हैं, छह खिड़कियां हैं, या कहो कि ये छह क्षेत्र हैं। आंख के आयतन में आंख का क्षेत्र है, आंख संबंधी काम यही होगा, कान संबंधी सुनने का काम यही होगा, नाक का सुनने का, इस तरह से छह क्षेत्र कहो चाहे, तो आयतन है ये छह आयतन। आयतनों को भी भीतर के आयतन, बाहर के आयतन, क्या भीतर के आयतन कि माने शरीर के साथ जो लगे हुए हैं, आंख है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, मन है, ये सारे शरीर के साथ लगे हुए हैं, और इनके जो आलंबन हैं वो बाहर के हैं। बाहर के आलंबन भी आयतन कहलाते हैं, ये जो द्वार हैं ये भी आयतन कहलाते हैं, लेकिन बाहर का आलंबन हमारे लिए आलंबन तब तक नहीं है जब तक कि शरीर को आके स्पर्श न कर ले। रूप हमारे लिए रूप नहीं है जब तक कि आंख को न लग जाए। शब्द हमारे लिए शब्द नहीं है जब तक कि कान को न लग जाए। तो आखिर बाहर के जो आलंबन है उनका अस्तित्व भी इस शरीर के साथ छूने पर ही है, इसलिए सारा काम साधना का इस 3.5 हाथ की काया पर ही होता है, इसके बाहर नहीं। तो पुनच परंग भिक्खवे भिक्खु धम्मे सुधम्मानुपस्सी विहरति छसु अज्जत्तिक बाहिरेषु आयतनेषु, ये छह बाहर के भीतर के आयतन। कथंचपन भिक्खवे भिक्खु धम्मे सुधम्मानुपस्सी विहरति छसु अज्जत्तिक बाहिरेषु आयतनेषु, कौन है ये क्या है। इद भिक्खवे भिक्खु चक्खुं तप जानाति, चक्षु को जानता है। साधना करते 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 उस अवस्था पर पहुंच जाएगा कि सारा का सारा शरीर केवल तरंगे ही तरंगे, सब्बो लोको प्रकंपितो, लोक माने सारा शरीर, प्रकंपितो प्रकंपितो केवल प्रकंपन है और कुछ नहीं है। तो आंख पर आया तो आंख भी प्रकंपन है, ये आंख है और साथ साथ जान रहा है प्रकंपन है, क्योंकि वेदना साथ जान रहा है प्रकंपन है, तो जानता उसे। भिक्खु चक्खुं चप जानाति रूपं चप जानाति, रूप बाहर है तो बाहर वो उदय व्यय हो रहा है, तरंग हो रही है, ऊंची अवस्थाओं में जाके मालूम होने लगता है, लेकिन काम करते हुए उससे लेन देन नहीं। वो रूप आंख से टकराया तो क्या हुआ, तो जैसे ही रूप आंख से टकराया तरंग है, जैसे ही शब्द कान से टकराया तरंग है, गंध नाक से टकराई तरंग है, रस जीभ से टकराया तरंग है, कोई स्पर्शव्य पदार्थ त्वचा से टकराया तरंग है, कोई चिंतन मन से टकराया तरंग है, तो बाहर की भी छह इंद्रियां तरंग है, भीतर की भी छह इंद्रियां तरंग है, इस तरह से उसको देखता है। तो चक्खुं च पजानाति रूपे च पजानाति यंच तदुभयं, इन दोनों के पटिच्च, इन दोनों के कारण से प्रतित्य से उपपद्यते संयोजनं तंच पजानाति, इन दोनों की वजह से जो संयोजन तैयार होता है, बंधन तैयार होता है, गांठे बंधती है, उसको भी समझ रहा है क्योंकि गांठे बंध रही है, पका नहीं ना अभी तो, अभी तो शब्द आया और यद्यपि तरंग है, तरंग के साथ लगी है, फिर संवेदना जागी है तो संज्ञा ने कह दिया बहुत अच्छा शब्द है तो बड़ी अच्छी तरंग, बड़ी सुखद लगी तो राग जगाने लगा, और ये गाली है ऐसा ऐसा संज्ञा ने कह दिया बहुत बुरी है तो दुखद तरंग जागी तो द्वेष जगाने लगा, तो संयोजन बंधने लगा, कान और कान के शब्द इन दोनों की वजह से बंधन शुरू हुआ, आंख और आंख के रूप इन दोनों के वजह से ये संयोजन शुरू हुआ, इनको देखता है यथाभूत जैसा है वैसे देखता है, घृणा नहीं करता, उसको तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता, कुदरत तोड़ती है अपने आप, केवल देखता है। चक्खुं च पजानाति रूपे च पजानाति यं च तदुभयं पटिच्च उपपद्यते संयोजनं तंच पजानाति। फिर जब यूं देखते 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 अवस्था आती है अनुशय के निकलने की, तो यथाच अनुपन्नस्य संयोजनस्य उपादो होति तंच पजानाति। इसी आंख और रूप को लेकर के जो पुराने बंधनों का संस्कार भीतर दबा हुआ था अब वो फूट के आने लगा। यथाच उपन्नस्य संयोजनस्य पहानंग होति तंच पजानाति, उनका प्राण होने लगा। और यथाच पहीनस्य संयोजनस्य आयतिं अनुपादो होती तंच पजानाति, उस अरहंत अवस्था पर पहुंच गया, मुक्त अवस्था पर पहुंच गया, अब आंख और रूप इन दोनों का कोई बंधन ही नहीं रह गया, इनकी वजह से कोई बंधन हो नहीं सकता इस व्यक्ति को, क्योंकि इन दोनों की तरह इनकी दोनों के वजह से होने वाले सारे बंधन और बंधन बनाने का स्वभाव ही जड़ से निकल गया। इसी तरह से सोतंग च पजानाति, कान को जानता है, सद्दे च पजानाति, शब्द को जानता है, यंच तदुभयं पटिच्च उपपद्यते संयोजनं तंच पजानाति, उन दोनों की वजह से संयोजन जो होता है, संयोजन माने बांधना, गांठ बांधने, बंधन बांधने। यथाच अनुपन्नस्य संयोजनस्य उपादो होति तंच पजानाति, यथाच उपन्नस्य संयोजनस्य पहानंग होति तंच पजानाति, यथाच पहीनस्य संयोजनस्य आयतिं अनुपादो होति तंच पजानाति। शब्द और कान को लेकर के आगे कोई भी संयोजन बनने वाला नहीं है। घ्राणं च पजानाति गंधे च पजानाति, नाक और गंध, यंच तदुभयं पटिच्च उपपद्यते संयोजनं तंच पजानाति, इन दोनों की वजह से होने वाला संयोजन। यथाच अनुपन्नस्य संयोजनस्य उपादो होति तंच पजानाति, यथाच उपन्नस्य संयोजनस्य पहानंग होति तंच पजानाति, यथाच पहीनस्य संयोजनस्य आयतिं अनुपादो होति तंच पजानाति। वैसे ही जिह्वं च पजानाति, जीभ को जानता है, और रसे च पजानाति, रस को जानता है, और यंच तदुभयं पटिच्च उपपद्यते संयोजनं तंच पजानाति, और यथाच अनुपन्नस्य संयोजनस्य उपादो होति तंच पजानाति, यथाच उपन्नस्य संयोजनस्य पहानंग होति तंच पजानाति, और यथाच पहीनस्य संयोजनस्य आयतिं अनुपादो होति तंच पजानाति। इस बंधन से ही मुक्त होता है। और इसी प्रकार कायं च पजानाति फोटभ्ये च पजानाति यंच तदुभयं पटिच्च उपपद्यते संयोजनं तंच पजानाति। और इसी प्रकार यथाच अनुपन्नस्य संयोजनस्य उपादो होति तंच पजानाति, यथाच उपन्नस्य संयोजनस्य पहानंग होति तंच पजानाति, यथाच पहीनस्य संयोजनस्य आयतिं अनुपादो होति तंच पजानाति। मनं च पजानाति, छठी इंद्रिय मन, और धम्मे च पजानाति, इसमें क्या जाग रहा है वो, यंच तदुभयं पटिच्च उपपद्यते संयोजनं तंच पजानाति, यथाच अनुपन्नस्य संयोजनस्य उपादो होति तंच पजानाति, यथाच उपन्नस्य संयोजनस्य पहानंग होति तंज पजानाति यथा च पहीनस्य संयोजनस्य आयतिं अनुपादो होति तंज पजानाति। भविष्य में ऐसा बंधन बंध ही नहीं सकता, इस अवस्था पर आ पहुंचा। और फिर उसी प्रकार इति अज्जत्तंग बाधम्मेषु धम्मानुपस्सि विहरति बहिद्दा बाधम्मेषु धम्मानुपस्सि विहरति। भीतर के आलंबनों की वजह से धर्म जागा, कोई विकार जागा, जो अवस्था जागी चित्त पर वो भीतर अज्जत्तंग बाहर के आलंबनों की वजह से जागा इस काया में ही, तो उसको बहिद्ध। और इसी तरह दोनों साथ साथ, तो अज्जत्त बहिद्दा बाधम्मेषु धम्मानुपस्सि विहरति। और ठीक उसी प्रकार समुदय धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति वै धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति समुदय वै धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति अत्थि धम्माति। ये धर्म है, बस इतना ही। वापनस्स सती पच्चुपट्ठिता होती यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिस्सति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न चैकिंचि लोके उपादीयति। मुक्त हो गया। एवं पिखो भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सि विहरति छसु अज्जत्तिक बाहिरेषु आयतनेषु। इन छह इंद्रियों पर काम करते हुए मुक्त अवस्था पर पहुंच गया। इसे पूरा कर दें। बोझंग पब्बंग बोध्यंग हैं, बोधि के सात अंग हैं। एक एक अंग पुष्ट होता चला जाए, सातों अंग पुष्ट हो गए तो बुद्ध बन गया, बोधि प्राप्त हो गई, बोधि परिपूर्ण हो गई। ये सातों अंग आवश्यक हैं और साधना द्वारा अपने आप एक एक अंग पुष्ट होता है। प्रकृति के बंधे बंधाए नियम हैं, धर्म का अपना एक कानून है। चित्त अपने आप में निर्मल है, बड़ा निर्मल है। विज्ञान अपने आप में बड़ा निर्मल है। ये जो हम संस्कार बना बना करके, विकार जगा जगा करके उस पर मैल चढ़ा रहे हैं, उसने उसे मैला बना दिया। तो जैसे जैसे विकार निकलते जाते हैं, उसका अपना मूल स्वभाव प्रबल हुए जाता है, निर्मल चित्त का मूल स्वभाव। तो निर्मल चित्त में जो गुण हैं, निर्मल चित्त के जो गुण हैं, वो अपने आप बलवान होते जाते हैं, बलवान होते जाते हैं। देखते देखते अपने आप होगा, विकार निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, दुर्गुण निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, सद्गुण जो कि उसका स्वभाव है निर्मल चित्त का, वो अपने आप आए जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो हम करते कुछ नहीं, हमें तो केवल तटस्थ भाव से इस समय की ये सच्चाई है, इस क्षण की ये सच्चाई है। अब कुदरत अपना काम करना शुरू करती है, प्रकृति अपना काम करना शुरू करती है, धर्म अपना काम करना शुरू करती है। पढ़ते पर पढ़ते उतरती जा रहे हैं, उतरती जा रहे हैं, जो जो विकार हैं, जो जो हमको बांधने वाले हैं, जो जो इस मूल स्वभाव के विरुद्ध हैं, उनकी परतें उतरती जा रही हैं, उतरती जा रही हैं। और जो जो इस मूल स्वभाव के साथी हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सातों बोझंग देखते देखते बढ़ते चले जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे, और बाकी जितने विकार थे वो निकलते 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 दूर होते चले जाएंगे। तो ये सात बोझंगों की साधना भी इसी प्रकार देखने की साधना, देखते 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 इनका संवर्धन होगा। पुनच परंग भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सि विहरति सत्तसु बोझंगेषु सात बोधि के अंगों की धर्मानुपस्सना। कथंच पण भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सि विहरति सत्तसु बोझंगेषु। किस प्रकार करता है ये? तो इद भिक्खवे भिक्खु संतंग वा अज्जत्तंग सति संबोझंग अत्थि में अज्जत्तंग सती संबोझंगोति पजानाति। इस क्षण ये जो स्मृति है, सजगता है, ये एक बोधि का अंग है, बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। ये है और ये बढ़ रहा है तो बोधि बढ़ रही है। तो ये है ऐसा जानता है, इस समय सती है, सजगता है, ऐसा उसे जानता है। ऐ संतंग वा अज्जत्तंग सती संबोझंगं नत्थि में अज्जत्तंग सती संबोझंगोति पजानाति। नहीं है, काम करते करते नया नया साधक, कुछ देर सती रही, फिर रुझ गया, कहीं सती चली गई, नहीं जागरूकता है, तो देखता है नहीं है इस समय, फिर आई, फिर देखता है, फिर चली गई, तो जानता नहीं है, है तो है, नहीं है तो नहीं है, बस यही करता है, नहीं है तो जानता है नहीं है। और फिर इसके बाद यूं करते करते यथाच अनुपन्नस्य सति संभोजंगस्य उपादो होते तंच बजानाति। जैसे ये विकार दबे हुए हैं वैसे ही मानस की अपनी निर्मलता का जो स्वभाव है वो नीचे है और वो उठना शुरू हुआ, क्योंकि हम सती का काम किए जा रहे हैं उसको भी हम देखे जा रहे हैं। तो ये भीतर की जो सती का न जाने कितने जन्मों से काम किया है सती का भी, सजग रहने का भी, और उसका अपना स्वभाव भी है सती का, वो ऊपर आने लगा। तो यथाच अनुपन्नस्य सती संभोजंगस्य उपादो होते तंच पजानाति। और परिणाम क्या हुआ, यथाच उपन्नस्य सती संभोजंगस्य भावनाय पारिपूरी होती तंच पजानाति। इसकी भावना होने लगी, माने ये घटना घटने लगी, बार बार सती की घटना घट रही है, भवित हो रहा है, ये घटना घट रही है, बिकमिंग और बार बार हो रहा है, तो इसका बहुलीकरण हो रहा है। तो ये जो इसकी भावना हुई जा रही है, बहुलीकरण हुई जा रहा है, ये होते होते पारिपूर्ण हो गई, अरे परिपूर्ण हो गई, अब सती में कहीं कोई कमी न रह गई मुक्त अवस्था तक। हर पैराग्राफ मुक्त अवस्था की बात करता है, हर काम मुक्त अवस्था की बात करता है, तो सती हमारी परिपूर्ण हुई। अब संतंग वा अज्जतंग धम्म विजय संभु जंगंग अथ्यमे अज्जतंग धम्म विजय संभु जंगो तिपजानाति। धम्म विजय, जो कुछ धारण हुआ मन पर, जो कुछ आया वो इतना घनीभूत होकर के आता है, क्रोध आया कि द्वेष आया कि ईर्ष्या आई कि जो आया, अथवा जो शरीर और चित्त दोनों के संपर्क से जो कुछ घटना घट रही है वो भी इस कदर घनीभूत है, ये सारा शरीर भी इस कदर घनीभूत है, तो अभी दूर हैं हम, बात पूरी समझ में नहीं आ रही, भ्रांति है। ये विचयन होता है, इनका सबका चयन हो गया, इकट्ठे हो गए एक जगह, एकत्र हो गए तो भ्रांति पैदा करते हैं। अब काम चलता है उसको टुकड़े टुकड़े करने का, विभाजन करने का, धम्म विचय। तो इस समय धम्म विचय का काम हो रहा है, ये एक संबोधि का अंग है, ये भी सती संबोधि का अंग है, वैसे टुकड़े कर करके सच्चाई को देखना, ये धम्म विचय संबोधि का अंग है, इस समय धम्म विचय है ऐसा देखता है। और नथ में और असंतंग वा अज्जतंग धम्म विचय संभोजंगं, अगर नहीं है तो नथ्य में अज्जतंग धम्म विचय संभोजंगो तिपजानाति। व्याकुल नहीं होता, और है तो खुशियों से नहीं नाचता, जैसा है वैसा है यथाभूत। और फिर यथाच अनुपन्नस्य धम्म विचय संभोजंगस्य उपादो होते तंच पजानाति। और यथाच उपन्नस्य धम्म विचय संभोजंगस्य भावनाय पारिपूरी होते तंच पजानाति, वो भी परिपूर्ण हुआ। ऐसे ही संतंग वा अज्जतंग वीर्य संभोजंगं अथ्यमे अज्जतंग वीर्य संभोजंगो तिपजानाति। परिश्रम पुरुषार्थ किस तरह का, कि प्रतिक्रिया नहीं होने देंगे, यही पुरुषार्थ और कुछ नहीं, वो जागा है। ऐसंतंग वा अज्जतंग वीर्य संभोजंगं नथ्यमे अज्जतंग वीर्य संभोजंगो तिपजानाति। यथाच अनुपन्नस्य वीर्य संभोजंगस्य उपादो होति तंच पजानाति। यथाच उपन्नस्य वीर्य संभोजंगस्य भावनाय पारिपूरी होति तंच पजानाति। इसी भावना द्वारा, भावना का मतलब सेंटिमेंट नहीं है, एक घटना बार बार घटती है, उसका बहुलीकरण होता है, पुरानी भाषा में उसे भावना कहते थे। संतंग वा अज्जतंग पीत संभोजंगं अथ्यमे अज्जतंग पीत संभोजंगो तिपजानाति। यूं काम करते करते विकार निकलते निकलते भीतर बड़ी आनंद के लहरे, उन दिनों की भाषा में प्रीति प्रमोद की लहरे, ये जब चलने लगती हैं, ये भी आवश्यक अंग है धर्म का, विकार निकलना, और विकार निकलते निकलते जो दुखद संवेदनाएं हैं उनसे छुटकारा होना, और इस तरह की प्रीति की लहरें चलनी, ये काम की बात है। लेकिन इनके प्रति आसक्ति हो जाए तो कठिनाई की बात हो गई, बंधन की बात हो गई। इस समय ऐसी प्रीति की लहरें चल रही हैं, इस समय पुलक रोमांच चल रहा है, बस इतना ही जाने तो काम अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा, और नहीं है तो व्याकुल नहीं हो। ऐसंतंग वा अज्जतंग पीति संभोजंगं नथ्यमे अज्जतंग पीति संभोजंगो तिपजानाति। है तो है, नहीं है तो नहीं है। यथाच अनुपन्नस्य पीति संभोजंगस्य उपादो होति तंच पजानाति। अब दबा हुआ ऊपर उठता है। यथाच उपन्नस्य पीति संभोजंगस्य भावनाय पारिपूरी होती तंच बजानाती, ये संबोधि का अंग भी परिपूर्ण होता है इस प्रकार। फिर संतंग वा अज्जतंग पश्चद्य संबोजंगंग अति में अज्जतंग पश्चद्य संबोजंगो उत्पजानाती। विकार निकलते 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 पहले तो बड़ा आनंद मालूम होता है, पागल होता है तो उलझ जाता है उससे, ये बीच की धर्मशाला में अटक जाता है, उसको भी अनित्य है अनित्य है ऐसा देखते जाता है उसके धर्म को उसके स्वभाव को, तो उसकी लहरें भी दूर होती हैं। और उसके बाद जो शांति आती है प्रशब्दी आती है, बहुत गहरी प्रशब्दी, इतनी शांति इतनी प्रशब्दी एक शब्द भी सहन नहीं, माने एक शब्द भी उसको हिला देवे, ये सांस का चलना भी उसे हिला देवे, ऐसी प्रशब्दी आती है, बोधि का अंग है वो। इस तरह की प्रशब्दी आई अथवा नहीं आई, है या नहीं है, तो पुरानी आनी शुरू हुई और बढ़ते 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 परिपूर्ण हो गई। इसी को कहा ऐसंतंग बा अज्जतंग पश्चद्य संभोजंगं नत्थ में अज्जतंग पश्चद्य संभोजंग होति पजानाति यथाच अनुपन्नस्य पश्चद्य संभोजंगस्य उपादो होति तंच पजानाति यथाच उपन्नस्य पश्चद्य संभोजंगस्य भावनाय पारिपूरी होती तंच पजानाति, इसकी परिपूर्णता को देख लेता है। और ऐसे ही अगला बोधि का अंग संतंग वा अज्जतंग समाधि संभोजंगं अथे में अज्जतंग समाधि संभोजंग होती पजानाति, इन अवस्थाओं पर पहुंचते 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 समाधि सहज हो जाती है, गहरी समाधियां प्रथम ध्यान से लेकर के चौथा ध्यान आसानी से होने लगता है, तो समाधि है ऐसा देखता है और नहीं है तो नहीं है। ऐ संतंग वा अज्जतंग समाधि संभोजंगं नत्थ में अज्जतंग समाधि संभोजंगो उत्पजानाति, नहीं है तो नहीं है। और यथाच अनुपन्नस्य समाधि संभोजंगस्य उपादो होति तंच पजानाति यथाच अनुपन्नस्य समाधि संभोजंगस्य उपादो होति तंच पजानाति यथाच उपन्नस्य समाधि संभोजंगस्य भावनाय पारिपूरी होती तंच पजानाति, ये समाधि का बोध्यंग भी पूर्ण हुआ ऐसा अवस्था में, इसी अवस्था में पहुंचता है उसको देख लेता है। सातवां बोधि का अंग संतंग वा अज्जतंग उपेक्षा संभोजंगं अथ्य में अज्जतंग उपेक्षा संभोजंगो उत्पजानाति, उपेक्षा माने समता, ये दो बात नहीं छूटेगी, प्रारंभ वाली बात सती सजगता सारी बोध्यंग को सती ही परिपूर्ण करेगी, अगर सजगता छूट गई सारा काम अटक गया। ऐसे ही सारी बोध्यंगों को ये आखिरी बोध्यंग उपेक्षा शुरू से साथ चलेगा, हर जगह साथ चलेगा, समता 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 समता, समाधि आई तो समता, नहीं आई तो समता, अमुक बात हुई तो समता, न हुई तो समता, हर अवस्था में समता 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 रखता जाएगा, तो एक एक बोधि अंग परिपुष्ट होती चली जाएगी और ये उपेक्षा वाली बोधि अंग भी एकदम परिपुष्ट हो जाएगी। तो ऐसंतंग वा अज्जतंग उपेक्षा संभोजंगं नत्थ में अज्जतंग उपेक्षा संभोजंगं तिपजानाति, नहीं है तो नहीं है। यथाच अनुपन्नस्य उपेक्षा संभोजंगस्य उपादो होति तंच पजानाति यथाच उपन्नस्य उपेक्षा संभोजंगस्य भावनाय पारिपूरी होति तंच पजानाति, इस प्रकार सातों बोधि के अंगों को परिपूर्ण करता है। इति अज्जतंग वा धम्मे सुधम्मानुपस्से विहरति बहिद्धा वा धम्मे सुधम्मानुपस्से विहरति अज्जत बहिद्धा वा धम्मे सुधम्मानुपस्से विहरति, और उसी प्रकार समुदय धम्मानुपस्से वा धम्मे सुविहरति वै धम्मानुपस्से वा धम्मे सुविहरति समुदय वै धम्मानुपस्से वा धम्मे सुविहरति अत्थि धम्माति वापनस्य सती पच्चुपट्ठिता होति यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिसतिमत्ताय अनिश्चितो च विहरति न चैकिंचि लोके उपादेयति एवं भिक्खो भिक्खवे भिक्खु धम्मे सुधम्मानुपस्से विहरति सत्तसु बोझंगेषु। अगला पर्व कल देखेंगे, जो जो समझ रहे हैं उसे काम करें और अपने अभ्यास पर उतारें, मंगल उसी में है, और मंगल साधने के लिए आए हैं, कल्याण साधने के लिए आए हैं, जो जो आए सब अपना मंगल साध लें, अपना कल्याण साध लें, अपनी स्वस्थ मुक्ति साध लें।
सर्व मंगलं भवत सर्व मंगलं भवत सर्व